ચારિત્રની પ્રાપ્તિ તો મહા મહા અનંત કાળે દુર્લભ છે.
બરાબર,
એ બતાવે આ વ્યાખ્યા દુઃખની અને મિથ્યાત્વના ફળની બતાવે. સંસારમાં જન્મ મરણ ધારણ કરવાની કથા બહુ મોટી છે. પોતે કહે છે કે ભાઈ મુનિઓએ સંતોએ ભગવાનોએ સંસારમાં જન્મ મરણ જન્મવું ને મરવું એના જે જન્મ મરણ ને ધારણ કરવાની વાતો મોટી મોટી શાસ્ત્રમાં છે. તો પણ જે પ્રકારે પૂર્વ આચાર્યોએ સ્વામી કાર્તક આદિ આચાર્યોએ પોતાના બીજા ગ્રંથમાં જે કહી છે તે પ્રકારે હું પણ આ ગ્રંથમાં થોડીક કહી. આચાર્ય તો બહુ વિસ્તારથી કહ્યું છે, સ્વામી કાર્તકમાં તો ઘણો વિસ્તાર લીધો છે. કેટલું આ જીવે નરકથી પણ નિકૃષ્ટ નિગોદમાં એકંદરી જીવના શરીર ધારણ કર્યા. જેવો નરકથી પણ હલકો નિગોદ જીવ છે, નિગોદના જીવ એક શરીરમાં અનંતા જીવ રહે એને નિગોદના જીવ કહે છે. સમજાણું કાંઈ? નિત્ય નિગોદમાં આનંદ કાળ રહ્યો જેમાંથી કોઈ બી ત્રસ પણ પામ્યો એવા નિગોદમાં અનંતવાર રહ્યો. પણ અહીં ગ્રંથકારને નિગોદમાંથી નીકળી છે એવી વાત લેવી છે. કાંઈ આવે છે ને ભાઈ પાછળ નિસરી નિગોદથી નિસરી નીકળી ભૂમ આવ્યો ને એટલે નિગોદમાંથી નીકળનારની વ્યાખ્યા. નીત પડ્યો છે તો સમજાણું કાંઈ. એનો નિગોદ કોને કહેવાય નહીં, શ્રદ્ધા કરાવે છે. એમાં રખડ્યો કેટલો કાળ ને કેટલા દુઃખ સહન કર્યા. નિગોદના જીવ એક શરીરમાં અનંતા હોય છે, એને એક હારે અનંતાને શ્વાસ ભેગો હોય છે, આયુષ ભેગું હોય છે, ઇન્દ્રી ભેગી ને પ્રાણ. સમજાણું કાંઈ? એવા નિરોધની અંદર એકંદરી શરીર ધારણ કરીને ગોમણસાર માટે એવો એક લેખ છે કે નિરોધનું એક શરીર અસંખ્યાતા કુંડા કુડી સાગરૂપમ ઉધી રહે છે. એના નિરોધના જીવ જન્મે ને મરે, જન્મે ને મરે, જન્મે ને મરે. ઓહો, આવે છે વાત થઈ છે પહેલી છે ને એ ગુમસવા માટે એક નિગોદ નું શરીર એટલું અટલા કાળ રે એમાં એક નિગોદ નો જીવ વારંવાર મરે ઉપજે મરે ઉપજે મરે ઉપજે છતાં શરીર તો એનું રહે. એ શરીરમાં એટલી વાર અસંખ્ય 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 અબજો વાર અનંત જીવ નિગોદો જન્મે ને મરે, ક્યાંય એની ખાણની ખબર ન મળે ને. સમજાણું કાંઈ? શું કીધું? એક શરીરમાં એટલો કાળ રહે એ કે છે. જુઓ, નરક થી નીકળી નરક થી પણ હલકો નિગોદ કાળ છે. એક ઇન્દ્રિય જીવના શરીર ધારણ કરે છે. અનંતા જીવનું શરીર એક, ઇન્દ્રિય એક, શ્વાસ એક, એવા અનંતા જીવ એક શરીરમાં રહે છે એના દુઃખની પર્યાય શું કેવી કે છે. જેની હીણી દશા એટલી થઈ ગઈ છે, તત્વનો વિરાધક જીવ અનાદિનો તત્વનો વિરાધક કેટલાક અને કેટલાક તત્વના વિરાધક થઈને ત્યાં નિગોદમાં જાય છે. ઇતર નિગોદ એને કહે છે. અને આ નિગોદ અનાદિના આત્માના તત્વના સ્વભાવના ભાવના ભાવ કલંક પ્રૌરા ભાવની પ્રચુરતા કલંકની કલંક પ્રચુરને લઈને નિગોદના જીવ એક શરીરમાં અનંત આપ્યા છે. એના દુઃખ ભગવાન જાણે અને એ વેદે. એ જીવ છે હમક નથી.
બરાબર,
બટાટા શકરકંદ લીલફૂ એમાં એક કટકી આટલી લ્યો તો અસંખ્ય તો શરીર છે અને એક શરીરમાં અત્યાર સુધી સિદ્ધ જીવ થયા. છ મહિના ને આઠ સમય થશે ને આ સિદ્ધ થાય. અત્યાર સુધીના અનંત પૂજગળ પરાવર્તનના જે સિદ્ધની સંખ્યા અનંત પૂજગળ પરાવર્તનની જે સિદ્ધની સંખ્યા થોડી આનંદ પૂતગલ પાવર્તન ભાવવાની પછી સમજાણો. એક પૂતગલ પરાવર્તનમાં અનંતા એના અનંતમાં ભાગમાં અનંતી ચોવીસ જાય એવા એક પૂતગલ એવા અનંતા પૂતગલ પરાવર્તન એમાં એક ચોવીસી માં પણ છ માસ ને આઠ સમય સરસે આઠ મુક્તિ થાય એવા એવા અનંત પૂતગલ પરાવર્તન મુક્તિ ની સંખ્યા થાય છે. એના કરતા નિગોદના એક શરીરમાં અનંત ગુણ જીવ છે. સમજાણું કાંઈ ભૂતકાળ કરતા એમાં ઘણો કેટલો જીવો. એટલા જીવો તો એક શરીરમાં એમાં અનંત વાર રહ્યો. સાચું છે આ હે દુર્લભ પણ બતાવે છે ભાઈ. તને માણસ પણ મોરનું આગું કેતા કેતા નથી. એમાં સંન્યક દર્શન પામવું જે જન્મરણના અંતનું કારણ એ તો મહા દુર્લભ ભાઈ. આ દુર્લભ સામગ્રી પામીને હવે કાળને ટાણાને ન ચૂકીશ એમ કહેવા માંગે છે. કે છે આગળ બહુ કહેશે હજી સમજાય છે. એ નરકના હલકા કરતા પણ નિગોદનું એકેન્દ્રી જીવનું શરીર ધારણ કરે. સાધારણ વનસ્પતિ કાયમાં ઉપજી અનંત કાળ પસાર કર્યો. એક માં અસંખ્ય કરોડા કોડી સાગરમાં એક શરીર એમાં રહ્યો. વળી ગયા એવા એવા અનંતા નિગોદના શરીર પણ પલટાય રહીને સમજાણું કાય. કોઠીમાં હોય ને જેમ કોઠી મોટી હોય ને એક દાણો આવે ને જાય દાણો આવે ને કોઠી એમને એમ એમ નિગોદનું એક શરીર એટલા કાળ સુધી રહે છે. એમાંથી અનંતા જીવ જાય ને અનંતા આવે અનંતા જાય ને અનંતા મરે અનંતા જાય ને શરીર એમને મરે. એમાંથી એને આ નીકળવું કે છે એવો અનંતકાળ પસાર કર્યો. એ ત્રણ વાત થઈ. હવે નિગોદનું દુઃખ એમાં દુઃખનું વર્ણન કરે છે. આ બૌદ્ધિ દુર્લભ ભાવના વર્ણન કરવામાં સ્વામી કાર્તકે આ અધિકાર લીધો છે. એમાંથી આ મને આ લીધું છે. ત્યાંથી નીકળી પ્રાપ્ત કરીને ફરી આવ્યો. એક શ્વાસ ને અઠ દસ વાર જન્મ મર્યો ભર્યો દુઃખ બાર નીકળી ભૂમિ જળ પાવક ભયો પવન પ્રત્યેક વનસ્પતિ થયો. આ નિગુદમાં એ જીવ એક શ્વાસમાં અઢાર વાર દસ અઢાર વાર જન્મ ને મળ્યો. એક શ્વાસ અહીં તો શરીર પ્રતિકૂળતા આવે ત્યાં રાડ નક્કી જાય છે ને નહીં. એક શ્વાસ માં હોય અઢાર વાર ત્યાં જન્મો ને મળ્યો. અઢાર વાર એક શ્વાસ માં એવા અનંત વાર એવા અનંત શ્વાસોશ્વાસ નિરોધના શરીરમાં રખડવામાં એને કાઢ્યા છે. અહીં જે આવ્યો છે માથું ફરી જાય છે. જાણે શું કરવું અમારે શું કરવું ક્યાં જવું થાય હે. પૈસા કઈ થોડા થાય ત્યાં આમ થઈ જાય વધે ત્યાં આમ થઈ જાય. મારીને પણ હેરાન કરી નાખ્યો છે ને જીવને કે છે. ભાઈ બાપુ એ તારી કથા ઇતિહાસ ની લાંબી છે. કીધી ને જુઓ ને કીધું હું કીધું કે કશું કહી કહી મુની યથા એ તારી કથા મોટી છે ભાઈ. જેમ બરો બાર આવીને વાત કરે કે નહીં એને તારા કુટુંબમાં આવા માણસ થઈ ગયા આવા થયા તો આવા થયા હારા નરતા બધા કહે તો એમાં સર્વજ્ઞ ભગવાને તારી ભૂતકાળ ની કથા કીધી સા. ગયા કાળમાં કેટલો રહ્યો એ ભગવાને તો મોટું ઘણું કહ્યું. સંતો એ તો મહા ઘણું કહ્યું છે. પણ એમાંથી હું થોડી થોડી વાત કરીશ. કે છે એક શ્વાસમાં અઢાર વાર જન્મો ને મળ્યો એવા અનંત આજીવ વિકારી ભેગા જન્મા ને મર્યા. એટલી ભાઈબંધી હશે કે નહીં એને જરા નહીં લેવા દેવા. એક જીવમાં બીજા જીવનો અભાવ એક જીવની પ્રકૃતિ જુદી પર્યાય જુદી દ્રેગુણ જુદા, એના કર્મે જુદા, બધી જુદી. જન્મ ને મર્યો અને દુઃખ ભાર, દુઃખ ના સમૂહ, નિરોધ ના દુઃખ, એના દુઃખ નું શું કેવું? નરક ના દુઃખો તો પચેન્દ્રી સંયોગ ની વ્યાખ્યા છે ત્યાં. આના દુઃખો તો મિથ્યાત ને કષાય ની ઉગ્ર પરણતી નું દુઃખ છે. અને આમ તો દુઃખે સંયોગ થી કથન ભલે શાસ્ત્રકાર કરે, પણ દુઃખ નું સ્વરૂપ આનંદ થી ઉલટી મિથ્યા શ્રદ્ધા ને રાગ દ્વેષ ની ઉગ્રતા ના પરણવું, એનું નામ દુઃખ છે. વાત તો લોકો સંયુક્ત થી દેખે કે સંયુક્ત થી વાત કરશે. આ જન્મ મરણ નું દુઃખ, જન્મ મરણ નું દુઃખ નથી કરી સર. જો વાત એ કીધી, જો કે છે ને, એક વાર ધાર જન્મ મળ્યો ભર્યો દુઃખ ભાર. દેખો જન્મ મળ્યો દુઃખો ના સમૂહ સહન કર્યા. ભાષા શું છે? જન્મ ને મરણ ના દુઃખ ના ભાર સહન કર્યા. એને આમ બતાવવું છે કે ભાઈ આત્મા જન્મે મરે એમાં કસાઈ ની એટલી તીવ્રતા છે કે વારંવાર એમાં વિકારમાં દુઃખી થઈને વારંવાર પલટો મારે. એ માણસ ને જેના પર બહુ પ્રેમ હોય ને એ ચીજો બહુ પલટાવ્યા કરે. સમજાનું કાંઈ ભાઈઓ પાસે હાડલા ની પચી જાત હોય, જોયું છે એના ટંકમાં દિશાઈ જાય ત્યારે બીજું બેહવા તો બીજું, હુવા તો બીજું, આ કરત બીજી બીજી, આમ ફલટા ફલટ ફલટા ફલટ ઈડલીમાં કેટલી વાર ફેલાય. રાજા મોટા જોડા ફેરવે, બહુ લાકડીઓ બહુ ફેરવે. આમ ચંપલ આમ ઘરમાં હોય તો ચંપલ આ ફરવાનો હોય તો આ દિશાઈ જાવ તો આ ફલાના જવા, જુદી જુદી આત્મા જેના ઉપર રસ છે. આમ કરું આમ કરું આમ ભોગવું આમ ભોગવું આમ ભોગવું. જોયું છે કે નહીં? બાજુ ના શું વિચાર ખોલી જોયે કેટલા હવા ત્યાં સુધી હાડલા કેટલા ફેરવે તમારે? ગરીબ માણસ એક લોજ શું ફેરવે? 10,000 ના 15,000 ના ફેરવે, ફેરવા ફેરવી તો તમારે બે ઘડીક માં બે ઘડીક માં આમ બાઈક ફરી ગયું લાગે લુગડું ફેરવ્યું. એમ આના સંસ્કાર કે છે કે શરીર નો એટલો પ્રેમ થઈ, તમને તો ખબર નથી રહ્યું છે. એક શરીર માત્ર, શરીર માત્ર રહ્યું છે. એકત્વ બુદ્ધિ એટલી છે એમાં, એટલી એકત્વ બુદ્ધિ છે, ગ્લાંટ મારી મારીને એક શ્વાસમાં ધાર ભાવ કરે છે. એના એક દિવસના કેટલા શું કઈ કહેવાય છે ને, એક અંતર્મુહૂર્ત ના 3,000 હાથ છે ને, 78 હે કે શું કઈ 72 હે 74 જે આંકડો હોય હે, એટલા એક અંતર્મુક્ત માં એટલા ભાવ કરે છે. મોટા આંકડો જે હોય ઉપરા ઉપર એટલો પ્રેમ છે ને ભગવાન આત્માનો. પ્રેમ તો ચાલ્યો ગયો છે, ઉગ્ર પ્રેમ ત્યાં એકત્વ બુદ્ધિમાં થઈ ગયો છે. ગ્લાટ થાય આમ શરીર ફરી એક શ્વાસમાં 18 ભાવ હતી કઈ વાત છે? સમજાય છે કાંઈ? એવા દુઃખોના સમૂહને જન્મ મરણ ની વ્યાખ્યા થી આચાર્ય દુઃખ ની વ્યાખ્યા કરી છે શાસ્ત્ર માં. એટલે દોલતરામજી પણ એ શૈલી વાત કર્યો છે, નહીં તો જન્મો મરવો એ તો સંયોગ થયો. જન્મ સંયોગ, મરણ એ સંયોગ નો વિયોગ. પણ એ વખતે એને ભીંસ ની મિથ્યાત અને કષાય ની એટલી તીવ્રતા છે કે એના દુઃખ ના જન્મ મરણ વખતે ભગવાન જાણે ની વેદ એટલું દુઃખ છે એને. સમજાણું કાંઈ? એની વ્યાખ્યા થોડી આપી છે ઉલાઈ કઈ કહ્યું હતું ને કે ભાઈ નિગોદ ના દુઃખ ને સી રીતે ભાઈ હાય તો જરી હિરાલ કે પોકલી પુસ્તક છે ને. તમે એક માણસ હોય એને એમ કે દરેક અવયવમાં લુગડા ભરાવી દે મજબૂત લોઢાના હરિયાથી એને બાંધે કૂટ લખે આખો ઉડે અને પછી એક ઝાડ ઉપર ચીંગાડે એને બાંધીને. શું જોવો છો? હે સમજાય? ખબર હું તો ધ્યાન આવ્યો હોય શું કરે કબૂતર ત્યાં કોણ ઉડાડે કો સમજાવવામાં. એ ઝાડ ઉપર બાંધે લોચો કરીને આમ બધું બંધ બંધ કરી પણ જેઠેથી અગ્નિ જળાવને માથેથી કોરડા મારે એ તો પડી પચેન્દ્રની વ્યાખ્યા છે. એથી દુઃખ તો અનંત ગણું છે. એ તો એક લોકોને જરી એમ લાગે ને કે સીવી નાખ્યો હોય મોટું આમ જ ને પછી હું ચારે કોઈ ભીડો મારી ભીડો શરીરનો અને લોઢાના હૈયાથી ધમધમતાથી બાંધી અને લોઢાના હૈયા નાખી માથે ઝાડ ઉપર બાંધે અને માથે પીટે પછી હુંકારો કરી શકે નહીં, અવાજ કરી શકે નહીં, હલી શકે નહીં, કાંઈ નહીં, એકલી પીડા. એ તો સંયોગથી વાત છે, સમજાવું શી રીતે. પણ ખરેખર તો એને સંયોગી ભાવનું દુઃખ છે. સમજાણું કાંઈ જરી રાડ નાખે ગયા હતા, હાય હાય આને સારું થઈ ગયું, મને ખરાબ થઈ ગયું, આને આ થઈ ગયું, ઓલો સડી ગયો ભાઈ, નાનો ભાઈ સડી ગયો, મોટો ભાઈ રહી ગયો, ફૂળીએ સડ્યો છે, ત્યાં શું છે ન્યાય. કે છે ભાઈ તારા દુઃખો ની વ્યાખ્યા ભગવાન શું કે આત્માના આનંદ ની જેમ વાત નો પાર.
ઠીક હૈ ચલિયે અબ હમ લોગ સ્ટાર્ટ કરતે હૈ મંગાચરણ સે. हम सब हाथ जोड़ेंगे, आंख बंद करेंगे. नमो अरहंताडम, नमो सिद्धाडम, नमो आयियाडम, नमो वच्छायाडम, नमो लोय सप्तसाहूडम. तीन भुवन में सार वीत राग विज्ञान ता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके. हम सब साथ में अभी तक की गाथाएं जो हमने पढ़ी है वो हम साथ में पढ़ते हैं. तो ऐसा करेंगे हम में से कोई एक जन लीड लेगा और बाकी हम अपने माइक्स म्यूट पर कर लेंगे और हम अपने म्यूजिक अपने घर से बोलेंगे और बाकी एक जन माइक पर रहेगा तो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा. रिजुल आप लोगे, आप गाओगे, बाकी सब आपको फॉलो करेंगे. ठीक है.
जय त्रिभुवन में जीवन सुख चाहे दुख ते भयवंत ताते दुख हारी सुखकार कहे सिख गुरु करुणाधार ताही सुनो भवे थे मन आन जो चाहो अपनो कल्याण मोह महामद पियो नादि भूली आपको भरमतवादी ता शुभ मन की है बहु कथा ते कछु कहु कही मुनि जता काल अनंत ने गोद मन जा दे तो एक इंद्रिय तन दार एक सांस में अठ दस बार जन्मो मरो भरो दुख बार निकसी भूमि जल पावक भयो पावन प्रत्येक वनस्पति धयो.
हाँ वेरी गुड. तो फिर अभी जो हमने अभी तक जो स्वाध्याय किया है गुरु श्री का कहाँ तक चला आज कौन बताएगा. आज कौन कौन सी गाथाएं ली गुरुदेव श्री ने.
थ्री एंड द फर्स्ट लाइन ऑफ फोर.
ओ वेरी गुड. तो आज समझ में आया आपको कुछ. मानस विजुल दिया हेलो
के
नहीं पहले जस्ट ये बताइए आपने नोट किया कुछ आज.
हाँ
दिया आप मानस ने किया है और रिजुल आपने
नहीं
कुछ भी नहीं, एक एक हाफ लाइन वन समीर आपने ओके दिया अच्छा ओके फर्स्ट ऑफ ऑल ओके फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों ने स्किट जो की मैंने वो देखा छह डाला पर पॉज आई हैव नो वर्ड्स इट वॉज बहुत ही अच्छा बहुत अच्छा था एंड देखकर बहुत अच्छा लगा मुझको बहुत अच्छा किया मानस समीर दिया रेजुल ओके किसने तैयार कराया था ये आपको हेलो
डैडी और नीरज अंकल
ओके तो आप लोगों ने भी बहुत अच्छा स्क्रिप्ट वॉज वेरी गुड एंड बहुत अच्छा किया वेरी गुड लाइक थैंक यू मुझे बहुत अच्छा बहुत खुशी हुई देखकर ओके तो अभी हम वही वाली जो आप लोगों ने बात करी है ना वही वाली बात आज गुरुदेवश्री ने करी अभी इस पहली डाल पर क्या क्या बात आई है पहले मानस और समीर आपने क्या नोट किया आप वो बताओ समीर फर्स्ट
That this Anant Kal and Nityanigod before we go to any of the Charagatis. And in Nityanigod, like the Jeev die, they are born and they die at the same time. And.
Very good, very good.
That like. When you go back to Nigod after going to the Gatiya, it's Itter Nigod. And the Muni tell us. And the Muni tell us about our past.
Very good. Or coach?
No, that's all.
Oh, very good, very good. Well done. हाँ मानस आपने क्या लिखा है
नित्य निगोद में जीव अनंत काल रहा और फिर वहां से निकल के चार गति में गया और निगोद जीव के एक शरीर में अनंत जीव है और एक सांस में 18 बार जन्म मरण लिया
Very good. Or aur kuch not kiya hai, Manas?
Nahin.
Okay, very good. Well done. Ha, abhi bade logon se kis kis ne note kiya hai?
Humne kiya Niyati ne.
Neeraj ne kiya.
Okay. और ओके नीरज जी आपने और बाकी यानी नोट किया है कि कोई है अच्छा किसने नोट नहीं किया वो बताइए बड़े लोगों में से हाँ सबने किया है
चलिए
वेरी वेल डन ओ क्यों क्या हुआ
आई मीन समझ में तो आ गई थी लेकिन थोड़ा धीरे धीरे समझ में आ रही थी
ओके 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 नोटबुक और पेन तो था ना रेडी आपके पास कि वो भी नहीं रखा था आपने
नहीं वो तो था रेडी था
ओके ओके फिर ठीक है ओके एज लॉन्ग एज हम लोग लिखने का ट्राई कर रहे हैं तो तब तक सब फाइन है आप करिए नहीं करिए ओके ठीक है हाँ नियति आंटी आप बताइए क्या नोट किया
शुरू में गुरुदेव श्री बताते हैं कि अनादि से हमने रत्नत्रय की भावना मतलब प्रकट नहीं हुई है और वो दुर्लभ भावना के कारण हम लोग अनंत बार घूमे हैं और वो उन्होंने बोधि दुर्लभ भावना जो आगे 12 भावना में आने वाली है उसमें से कार्तिक अनुप्रेक्षा के बारे में बताया कि वो आचार्य देव ने बहुत सारे डिटेल में वो भावना के लिए बताया है
बहुत बढ़िया बराबर पहले हम इस पे डिस्कशन कर ले, ये वाले पॉइंट पर, ये वाला पॉइंट सबसे बिगनिंग में आया था, बहुत बढ़िया। तो हम दो मिनट डिस्कस करते हैं, फिर आप नेक्स्ट पॉइंट बताइएगा। हमारे पास अभी तक हमने आचार्यों के नाम जो याद किए, वो आचार्य कुंदकुंद देव, आचार्य अमृत चंद्र देव, आचार्य धरसेन, आचार्य पुष्पदंत, आचार्य भूतबली, और कौन से आचार्यों के नाम याद किए थे हमने? समंत भद्राचार्य का किया था एक बार,
पुष्पदंत।
हेलो, और कोई नाम याद है आपको आचार्यों के?
पुष्पदंत जी,
पुष्पदंत आचार्य, भूतबली आचार्य, बराबर।
जयसेन,
जयसेन आचार्य, और दिया, मानस, रिजुल, और कोई आचार्य के नाम?
आचार्य उमर स्वामी।
कौन से स्वामी?
उमा
आचार्य, उमा स्वामी, वेरी गुड, उमा स्वामी। और कोई? पद्म प्रभ मलधारी देव, वेरी गुड। और कौन से आचार्य है?
पूज्यपाद
आचार्य, बहुत बढ़िया, पूज्य स्वामी। दिया, और कोई नाम? भक्तामर किसने लिखा है? भक्तामर दिया आपको क्या? आचार्य मानतुंग, वेरी गुड, आचार्य मानतुंग। इतने सारे आचार्यों के नाम हो गए। अब यहाँ पर एक और नाम है आज आया था, जो एक आचार्य कार्तिकेय हुए, आचार्य कार्तिकेय, ओके, क्या नाम है उनका? कार्तिकेय आचार्य, ओके। उनका एक ग्रंथ है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा मतलब होता है भावना। भावना कितनी होती है, कौन बताएगा? समीर, समीर भावना कितनी होती है? समीर पता है भावना, कभी सुना है भावना?
हाँ,
कितनी होती है आपको कुछ आइडिया है? हाउ मेनी भावनाज आर देयर?
12,
12, वेरी गुड, 12 भावना होती है, बराबर। तो भावना का दूसरा नाम है अनुप्रेक्षा, तो हम इनको 12 अनुप्रेक्षा भी बोलते हैं, 12 अनुप्रेक्षा, 12 भावना, ओके। तो हम सबको पता है 12 भावनाएं होती हैं, ठीक है, हम नाम अभी हम उनके नेम्स पर नहीं जा रहे हैं, ओके। तो आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय अनुप्रेक्षा एक ग्रंथ लिखा, और उसमें क्या बताया? उसमें 12 प्रकार की भावनाओं को बहुत डिटेल में उन्होंने बताया है, ओके। तो उन्होंने हर एक भावना पर लाइक बहुत सारी सारी किसी किसी भावना पर तो उन्होंने 80-80 गाथाएं लिखी हैं, 60-60, ओके। तो ये उनका ग्रंथ है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा, मतलब कार्तिकेय स्वामी वाली 12 भावनाएं, ओके, क्योंकि उन्होंने लिखी है, तो ये उस ग्रंथ का नाम ये पड़ गया, ठीक है। अब आज जो गुरुदेव श्री ने बताया था, वो ये बताया था कि हम जो पहली ढाल पढ़ रहे हैं ना, इसका कंटेंट यदि हम शॉर्ट में बोले तो 12 भावनाओं में से 11th नंबर की भावना है, 11th नंबर की, ओके। गुरुदेव श्री ने 3 भावनाओं के नाम बताए थे आज, 10th, 11th एंड 12th। हम वो तीनों के नाम याद करते हैं, ओके। फर्स्ट सेकेंड वाले हम थोड़ी टाइम बाद आएंगे, वो आगे आएगी हमारी, ओके। तो 10th नंबर की जहां पर हम रहते हैं, इसको बोलते हैं संसार भावना, लोक भावना, मतलब ओके, लोक जहां पर हम रहते हैं, लोक, तीन लोक होते हैं, कौन कौन से तीन लोक? हमने पहले ही पढ़ा, जे त्रिभुवन में जीवनन, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। तो इसको लोक, तो इसकी भावना, मतलब हमने कहां कहां जन्म लिया उसको बताती है लोक भावना, कि हम कभी 7वें नरक पर भी गए, कभी उसके नीचे भी जो वहां पर निगोद है वहां पर भी गए, कभी हम सर्वार्थ सिद्धि वहां पर के निगोदिया जीव जो है वहां पर, जो अलग अलग जगह वहां पर भी हुए, कभी सिद्धिशिला में भी हुए होंगे, तो हम कहां कहां किस किस कोने में गए लोक के, ये होती है लोक भावना, ओके। ये हमारा मतलब उसका पूरा मैप है, तीन लोक का मैप के बारे में बताती है लोक भावना, ओके। दूसरी ये हो गई 10th नंबर की, 10th नंबर की भावना का नाम क्या है? लोक भावना, मतलब उसमें तीन लोक में हम कहां कहां गए उसकी बात है, ओके, वो लोक भावना हुई। 11th नंबर की जो भावना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो पहली ढाल है ये उस 11th नंबर की भावना पर बेस्ड है, ओके। उसका नाम है बोधि दुर्लभ भावना। क्या नाम है? हेलो,
बोधि दुर्लभ भावना।
बोधि दुर्लभ, बोधि मीन्स होता है ट्रू नॉलेज, सम्यक ज्ञान, बोधि यानी कि हमारा अवेकनिंग, मुझको बोध हुआ है, मतलब मुझको इसका सच्चा ज्ञान हुआ है. तो बोधि यानी कि ट्रू नॉलेज, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हम बोल सकते हैं. ओके. और दुर्लभ मीन्स वो कितना टफ है उसको मिलना, मतलब दुर्लभ को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, कितना ये कितना ज्यादा हमको दुर्लभ के लिए एग्जैक्ट वर्ड क्या होगा मुझे नहीं आ रहा है ख्याल. क्या बोल सकते हैं?
प्रिविलेजेस.
प्रिविलेजेस, हाँ, उसको मतलब कितना उसके प्रिविलेज, उसको वी आर नॉट प्रिविलेज. दुर्लभ मतलब इट्स वेरी टफ टू अटेन. इट्स वेरी रेयर. रेयर दुर्लभ यानी कि रेयर. ओके. जो बोधि जो है ना, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है, वो क्या है, बहुत रेयर है, दुर्लभ है, बहुत कम जीवों के पाया जाता है. बराबर. सम्यक दृष्टि कितने हैं? बहुत कम है मिथ्या दृष्टियों की अपेक्षा. बराबर. करेक्ट. तो ये जो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है इसको कहते हैं बोधि. और इसकी दुर्लभता मतलब ये कितना रेयर है, मतलब यदि मैं अभी निगोद में होता या फिर मैं अभी कहाँ पर होता, मान लो अभी मैं दो इंद्रिय जीव होता, तीन इंद्रिय जीव होता, चार इंद्रिय जीव होता, पांच इंद्रिय असंगी जीव होता, तो क्या मैं सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाता? हाँ, कर पाता क्या? हाँ कि नहीं?
नहीं.
यदि मैं चींटी लाइक एंट होता तो मैं क्या सम्यक दर्शन प्राप्त कर पाता एंट की अवस्था में?
नहीं.
नहीं कर पाता ना, क्योंकि सम्यक दर्शन ओनली पंचेंद्रीय जीवों को होता है, जो जिनके पास मन होता है, मतलब जो संगी होते, जिनके पास पांचों सेंसेस होते हैं और मन होता है, सिर्फ उन्हीं को सम्यक दर्शन हो पाता है, क्योंकि उनके पास विचार करने की, सोचने की शक्ति है, अंडरस्टैंड करने की शक्ति है. एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय जीव और जिनके पास मन नहीं है, ऐसे पांच इंद्रिय जीव, उनको इतनी शक्ति ही नहीं है कि वो अपना भला बुरा सोच पाए. तो बस वो जैसे उदय आते हैं वैसे वो दुख को भोगते हैं. लेकिन जो पांच इंद्रिय संगी हैं, मतलब जैसे हम लोग हैं, देव गति के देव हुए, नरक गति के नारकी हुए, और जैसे बड़े बड़े जो जानवर होते हैं, गाय मीन्स काउ हुआ, लायन हुआ, तो ये सारे क्या है, ये सब संगी पंचेंद्रिय जीव है, इनके पांच इंद्रिया भी मन भी, तो इनको सम्यक दर्शन हो सकता है. अब हम टोटैलिटी में देखें तो पांच इंद्रिय संगी जो जीव है और इसके अलावा जितने जीव हैं, तो इन कंपैरिजन टू इसके अलावा जो जीव है, पांच इंद्रिय संगी जीव बहुत थोड़े हैं, एकदम यानी कि मिनी, उसका कोई नेग्लिजिबल अमाउंट है, नंबर है, यदि हम कंपेयर करें. क्यों? क्योंकि एक निगोद के शरीर में कितने सारे जीव हैं? इनफाइनाइट. और मनुष्य गति में जो जीव है वो फाइनाइट है, मतलब उनको आप गिन सकते हो. ओके. मनुष्यों की संख्या जो है वो फाइनाइट है. तो बताओ इनफाइनाइट का फाइनाइट किस, इनफाइनाइट के सामने फाइनाइट तो कुछ भी नहीं होता ना. ऐसे नारकी और देव, इनकी संख्या भी कंपैरेटिवली बहुत कम है. तो इससे क्या पता पड़ा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सम्यक दर्शन कितनी कम हो गई, कि देखो जो जो पांच इंद्रिय संगी से नीचे उनको तो कभी हो गई नहीं, तो जो मेजर पोर्शन ऑफ जीव है वो तो खत्म ही हो गए, उनको तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो सम्यक दर्शन वाली कैपेबिलिटी वाले हैं ही नहीं. अब जिनको ये शक्ति है उनमें से भी कितनों को होता है, हम इतने सारे लोगों को देखते हैं, इनमें से भी आधे यानी कि हम गिन सकते हैं, चलो 1 लाख 2 लाख लोगों को, तो अभी हम लोग जितने लोगों को जानते हैं उनको तो ये बात सुनने को, हम सभी क्लासेस कर रहे हैं, बाकी के लोगों को तो ये वाली बात पता ही नहीं है कि सम्यक दर्शन कुछ होता भी है, मिथ्या दर्शन कुछ होता भी है. तो उनके लिए सम्यक दर्शन का होना कितना ज्यादा रेयर हो गया, मतलब वो कभी इस बात के अक्रॉस आएंगे गलती से तो कभी वो जानेंगे, फिर सम्यक दर्शन होगा. बराबर. करेक्ट. तो फिर हमें जो दिख रहे हैं, हम यदि अपने मुमुक्षु भाइयों को छोड़ दें और हमारे जैन भाइयों को छोड़ दें, उसके अलावा बाकी सब लोगों को तो ये मिथ्यात्व क्या ये पता ही नहीं है. बराबर.
बराबर.
उनके लिए अब सम्यक दर्शन कितना रेयर है? बहुत ज्यादा रेयर हो गया. अब हमको ये वाली बात पता है, फिर भी हमको सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा है अभी तक, हमारा मिथ्यात्व नहीं जा रहा है. तो जब हमको सच्ची बात पता है फिर भी ये नहीं हो रहा है, तो ये कितना रेयर है? समझ रहे हो आप? मतलब पहले तो हमने उनको हटाया जिनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, फिर हमने उनको हटाया जिनके पास कैपेबिलिटी है बट उसके बारे में उनको नॉलेज ही नहीं है, दे आर नॉट प्रिवी ऑफ दिस नॉलेज, उनको ये वाली बात प्रिविलेज्ड नहीं हुई. उनको उन्होंने ना जैन कुल में जन्म लिया, ना उनको ये वाली बात बताने वाला कोई मिला, ना उनको ऐसा विचार करने का विकल्प आया, तो वो भी अलग हो गए। अब जिनको ये वाली बात पता है, जो जानते हैं कि ये करना है, फिर भी उनके नहीं हुआ, तो इससे क्या पता पड़ता है कि ये जो बोधि है यानी सम्यक दर्शन है, ये बहुत दुर्लभ है, मतलब रेयर है। यानी कि जिसको ये हो जाए वो अनंतानंत जीवों में से लकीएस्ट पर्सन होता है, क्योंकि कितने ज्यादा लोगों को छोड़कर उसको हुआ। बराबर, करेक्ट, आपको समझा? तो इस भावना को बोलते हैं बोधि दुर्लभ भावना, कि ये सम्यक दर्शन होना कितना ज्यादा दुर्लभ है। तो अब यहाँ पर क्या बताएंगे कि हमको ये बताएंगे कि पहले तो मैं अनादि का निगोद गति में था, निगोदिया जीव था, तो निगोदिया जीव को तो सम्यक दर्शन होने की क्षमता ही नहीं है। तो जब तक मैं अनादि काल तक निगोद में रहा, तब तक तो मैं इससे एकदम दूर ही रहा बोधि से, तो मुझे बोधि नहीं हो पाई। बराबर, फिर मैं दो इंद्रिय हुआ, तीन इंद्रिय हुआ, चार इंद्रिय हुआ, तब भी मुझे बोधि नहीं हो पाई, मुझे सम्यक दर्शन नहीं हो पाया। अब मैं पंचेंद्रिय मनुष्य हुआ हूँ, मुझ में सम्यक दर्शन की शक्ति हुई है, और ये मनुष्य भव तो बहुत छोटा सा है, 50 ईयर्स 60 ईयर्स 70 ईयर्स 80 ईयर्स बस। तो यदि अभी मैंने बोधि नहीं करी तो मैं वापस निगोद या दो इंद्रिय तीन इंद्रिय में चला जाऊंगा, तो फिर ये बोधि वापस मुझसे दूर हो जाएगी। इसके लिए अब मुझे यहाँ पर अपन को आगे जब जाएंगे पहली ढाल में, तो ये बोलेंगे कि हमको अपना समय खोकर ऐसा काम नहीं करना चाहिए, हमको जल्दी से जल्दी बोधि को प्राप्त कर लेना चाहिए। तो इसलिए इस भावना को बोलते हैं बोधि दुर्लभ भावना, जिसमें हम कंपैरिजन करें पहले तो कि हमको ये कितनी ज्यादा कठिनता से प्राप्त हुआ है, हमें जो प्राप्त हुआ है वो कितना रेयर है, कि आउट ऑफ 2 बिलियन पीपल वी हैव ऑन दिस अर्थ, 2 बिलियन है ना हमारे पास अर्थ में, हेलो कितने बिलियन लोग हैं मुझे नहीं पता, 6 बिलियन, सॉरी आई गेस
6 बिलियन,
6 बिलियन राइट, हाँ 6 बिलियन लोगों में से हम लोग कितने हैं, लाइक आप लोग अभी शिविर में जुड़े तो कितने लोग आए आपके टोटल यूएसए में से, कितने लोग आपके शिविर में आए थे गुरुदेवश्री वाले,
40 50 100 100 100,
ओके सॉरी 100 150, तो आउट ऑफ लाइक पूरे यूएसए की पॉपुलेशन 150 लोगों को लाइक ऐसी बुद्धि हुई कि भैया चलो ये वाली बात सही है। तो अब आपको समझ में आ रहा है रियलिटी ऑफ ट्रुथ, कितना रेयर है ये ट्रुथ, या फिर हम टोटल 6 बिलियंस में से ले तो मुमुक्षु कितने हैं, या फिर जो इस बात को सही समझने वाले हो कितने हैं, 2 लाख 3 लाख कितना मानोगे आप? हाँ बताइए। तो आउट ऑफ 6 बिलियन यदि हम सेफर साइड पर चलिए 4 लाख लेते हैं, 5 लाख लेते हैं, तो भी वो 6 बिलियन के सामने क्या है?
कुछ नहीं।
ये वाली बात इतनी, अब उनमें से भी 6 बिलियन में भी हम लोग मेजोरिटी तो वो है जिन्होंने बस स्वाध्याय किया, बस खत्म हो गया, बाकी कोई अपने मन से बैठकर उसका विचार करने वाला, उसके बाद सोचने वाला कि मैं कौन हूँ, कैसे आया हूँ, ऐसा किसी के बिना पढ़ खुद समझने वाले कितने लोग हैं, वो तो मेरे हिसाब से फिर हम लोग होंगे भैया 3000 4000 5000। तो ये वाली बात कितनी रेयर है जो हम अभी कर रहे हैं, हमको ऐसी जो बुद्धि हुई है, तो पहले तो वी शुड फील वेरी प्रिविलेज्ड कि हमको इतने रेयरिटी में आउट ऑफ 6 बिलियन वी आर दोज मोस्ट प्रिविलेज्ड पीपल, जिनको ये मोस्ट यू नो वैलिड इंफॉर्मेशन अबाउट यू नो वस्तु व्यवस्था जिनको हमें को हमको हमारे सामने आई है। तो सबसे पहले तो हम इतने ज्यादा रेयर ह्यूमन बींग्स में से हैं जो कि सही मार्ग पर लगने के एकदम राइट पाथ पर है, कि भैया यदि हमने थोड़ा सा बस ये मिथ्यात्व को हटा दिया तो हमारा संसार गया, बस हम भी वो अरहंत और सिद्ध भगवान बनेंगे जिनके अभी हम पूजन कर रहे हैं, जिनके गुणों की हम अभी पूजन कर रहे हैं। बराबर, तो बोधि दुर्लभ भावना सिर्फ ये बताती है कि भाई पहले जानो, पहले आप वंडर करो कि आपको ये कितना ज्यादा रेयर चीज मिली है, और जब आपको पता पड़े कि बहुत रेयर है तो डरो कि भाई ये जो रेयर चीज अभी मिली है जल्दी से चली नहीं जाए, और जब आपको डर लगेगा तब आप क्या करोगे, इसको सीज करना चाहोगे, और जब हम इसको सीज करना चाहेंगे तब हम क्या चाहेंगे, हम सम्यक दर्शन को लेंगे जिससे सीज हो जाएगा। तो इसके लिए बोधि दुर्लभ भावना का विचार करते हैं ये सोचने के लिए कि यार ये अभी हमको तो गई है, यदि दोबारा चलेगी तो कब मिलेगी, तो हम वापस इससे दूर हो जाएंगे, तो इससे अच्छा कि हम अभी अपना काम कर लें, बराबर। तो अब ये जो हमारी पहली ढाल है, गुरुदेव श्री ने ये बताया था आज कि हमने इसमें क्या किस बात की चर्चा करी है, पंडित दौलत राम जी ने, पंडित दौलत राम जी ने इसमें चर्चा करी है बोधि दुर्लभ भावना की। मतलब देखना, हम लोग क्या सोचते हैं, हमारे पास ज्यादा पैसा है तो हम बहुत ज्यादा पुण्यवान हैं, हमारे पास अच्छी फैमिली है, हमारे पास अच्छा बुद्धि है, हमारे पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, अच्छी डिग्रीज है, अच्छी मार्कशीट्स हैं, तो हम बहुत ज्यादा पुण्यशाली हैं, बहुत ज्यादा लकी हैं, बहुत ज्यादा हमने बहुत ज्यादा अचीव कर लिया अपनी लाइफ में। हमारा मतलब नजरिया कितना अलग है। यहाँ पर आचार्य देव क्या बताते हैं कि हम क्यों, हमारा पुण्य का उदय क्यों है, कि इस जगत के अनंत जीवों को जो नहीं प्रकट है, जिनको जो नहीं प्राप्त है, ऐसा जिनागम का जो सच्चा उपदेश वो हमारे पास है, इसके लिए हमारा पुण्य का उदय है। जो अनंत जीव जिसके बारे में वो विकल्प ही नहीं करते, जिसके कारण उनका संसार अनंत है, हमें वो संसार को छोड़ने वाली चीज प्राप्त है, इसके लिए हम पुण्यशाली हैं। ये संयोग तो वो पापी जीवों को भी मिल जाते हैं जो कि हिंसा से अपना जीवन यापन करते हैं, बराबर। अब कोई गंदे बिजनेसेस करता है, कोई बैटिंग करता है, कोई गैम्बलिंग करता है, कोई ये करता है, कोई नॉन वेजिटेरियन फूड का प्रोडक्शन प्रोसेसिंग करता है, ये सब करता है, इसके बाद भी वो लोग बिलेनियर हैं, राइट है कि नहीं है। फिर जो चीज ऐसे गंदे काम करने वालों को भी मिल जाती है, उसके लिए मैं अपने आप को क्यों अकम्प्लिश्ड कंसिडर करूं, वो तो किसी को भी मिल रही है, मैंने उसमें अच्छा क्या किया। लेकिन जिसके कारण मोक्ष पद मिलता है, हम भगवान बनते हैं, ऐसी बात जो कि इतनी रेयर है कि अच्छे अच्छे बिलेनियर्स को भी नहीं मिलती है, अच्छे अच्छे साइंटिस्ट को नहीं मिलती है, डॉक्टर्स को नहीं मिलती है, वो मुझे प्राप्त होते हैं। तो क्या हुआ, मेरे पास अच्छा पैसा ना हो, अच्छा घर ना हो, अच्छी फैमिली ना हो, लेकिन मेरे पास ये बात है जो कि उन लोगों के पास नहीं है जिनके पास ये सब है, उन अनंत जीवों के पास नहीं है जो कि इतने ज्यादा दुखी हैं मुझसे बहुत ज्यादा बुरी हालत में। जब मेरे पास दुख नहीं है तब मेरे पास दुख से कैसे मुक्त होना है, वो वाली बात है। और जिनके पास दुख है उनको तो ये वाली बात मिली नहीं। नारकी जीवों को कोई जाकर ये नहीं बताएगा कि भैया क्रमबद्ध पर भरोसा रखो, उदय के अनुसार हो रहा है, चला जाएगा, उनको कोई नहीं समझा रहा है, वो तो बस दुखी होते जा रहे हैं। तो मुझे वाली बात मिली है, तो क्यों ना मैं अपने आप को बहुत ज्यादा लकी फील करके इस अपॉर्चुनिटी को सीज करूं कि मैं हमेशा कितना लकी रहूं, मैं हमेशा ही ये सच्ची बात के पास रहूं। समझ, बोधि दुर्लभ भावना समझी सबको, किसको बोलेंगे, कि ये विचार करना कि हमको जो अभी मिला है ये कितने दुर्लभता से मिला है, हमको ऐसे ही नहीं मिल गया फ्री में, हम लोगों को कितने सारे भव हमने नगोद में बिताए, कितने सारे हम दो इंद्रिय तीन इंद्रिय बने, हम कितने सारी बार ट्री बने, हम समुद्र का पानी बने, हम अपने गैस की आग बने, अग्नि का ये चीज बने, हम वायु, ये जो हमारा ये जितने ज्यादा टॉर्नेडो, जितने ज्यादा ये सारे साइक्लोन्स होते हैं, हम साइक्लोन में हवा बने, हम ये सब बने, उसके बाद अब मुझे मनुष्य भव मिला है, तो आई एम कितना अभी प्रिविलेज्ड। अब मैंने यदि अपना काम नहीं किया तो फिर मेरे से बड़ा बेवकूफ कौन होगा कि जिसके पास हाथ में एक इतना ज्यादा डायमंड आया था और मैं फिर भी गरीब रह गया, मैंने उसका यूज ही नहीं किया, मैंने उसको वापस फेंक दिया, तो मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूं मैं फिर, लाइक मेरी मति कितनी ज्यादा खराब हो गई है, मेरा माइंड एकदम खत्म हो गया है क्या, कि जब मुझे पता था इतनी इम्पोर्टेंट बात है, मुझे पता है इतनी रियलिटी से मिली है, और फिर भी मैं इसके लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, बराबर। तो बोधि दुर्लभ भावना सबको समझा दिया आपको, समझा, हेलो, सबको समझा, समीर, रिजुल, मानस,
जी।
तो बोधि मतलब हुआ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, मतलब वो सही नॉलेज जिससे हम इस संसार से बाहर निकल सकते हैं, और दुर्लभ मतलब हुआ रेयरिटी, कि वो कितनी रेयर है, और उसकी भावना भाना कह रही है मुझे मिल गया है तो मुझे शीघ्र ही सम्यक को प्राप्त करना योग्य है, तो ये ऐसी भावना करना, इसको बोलते हैं बोधि दुर्लभ भावना। देखना हमारे आचार्य लोग कितने करुणा वाले, वो हमको कैसे कैसे समझा रहे हैं। बारह भावना पता है क्या होती है, बारह भाव ये होते हैं कि हम अपने आप को कैसे अलग अलग तरीके से धर्म में लगाते हैं। तो ये हमारे आचार्यों के अलग अलग समझाने के तरीके हैं कि भाई तुम ये जानकर मान के भैया संसार भावना में बताएंगे चार गति में कितने दुख है, तो हमें चार गतियों से छुटाएंगे। हमको बोधि बिरला भावना में बताएंगे कि तुम कितने प्रिविलेज्ड हो। तो हमको अलग अलग तरीके से आचार्य कैसे भी करके इस मार्ग में लगाना चाह रहे हैं कि हम कैसे अपना हित करें। और हम अभी भी आचार्यों की बात नहीं माने। आपको पता है आचार्य मतलब क्या, हमारे मुनिराज मतलब क्या, साधु परमेष्ठी मतलब क्या? देखो, अच्छा मुझे कौन बताएगा, सिद्ध परमेष्ठी के, अच्छा सबसे पहले इस संसार में सबसे उत्कृष्ट जीव कौन से हैं? रिजुल, सबसे हाईएस्ट सोल कौन से होते हैं? सिद्ध भगवान क्यों होते हैं? सिद्ध भगवान क्यों होते हैं?
Because they are in moksh.
हाँ, they are in moksh, मतलब मोक्ष में जाने के लिए उन्होंने क्या किया है, उनके कितनी हाँ, उन्होंने दे आर इंग्रॉस्ड इन देयर सोल, दे हैव एक्चुअली डिस्ट्रॉयड ऑल द एट कर्मास, राइट, आठ कर्मों का नाश किया उन्होंने, और उनके एक भी पैशन नहीं है। बराबर, चार पैशन होते हैं ना, हमारी चार कषायें होती हैं, अलग अलग अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन। ये चार प्रकार के कषाय के लेवल होते हैं क्रोधमान माया लोभ के, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे कभी। लेकिन इन्होंने इन चारों को खत्म किया है और उनको आठ कर्म का भी नाश हुआ है। अभी दूसरे टॉप मोस्ट कौन से सोल है इस दुनिया के, मतलब इस पूरे वर्ल्ड के, पूरे जगत के? फर्स्ट हो गए सिद्ध, सेकंड मोस्ट सुप्रीम सोल इज अरिहंत भगवान। क्यों अरिहंत भगवान क्यों? दिया, अरिहंत भगवान क्यों सुप्रीम है, उन्होंने ऐसा क्या किया है? दिया, हाँ,
What did you say?
मैंने पूछा अरिहंत भगवान ने ऐसा क्या किया है कि वो इतने सुप्रीम हुए हैं? अरिहंत भगवान ने क्या, सिद्ध भगवान ने तो आठ कर्मों का डिस्ट्रॉय किया है, ओके, आठ कर्मों को दे हैव डिस्ट्रॉयड, अरिहंत भगवान ने ऐसा क्या किया? हाँ, कितने कर्मों का नाश किया?
चार कर्मों को
उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है। प्लस, अच्छा, तो अरिहंत भगवान के पैशंस ज्यादा हैं सिद्ध भगवान से, अरिहंत भगवान को सिद्ध भगवान से ज्यादा कषाय हैं? करेक्ट ना समीर, अरिहंत भगवान को सिद्ध भगवान से थोड़ी ज्यादा कषाय है ना?
नहीं
है। क्यों, दोनों को तो किसके पास, अरिहंत भगवान ने चार कर्मों का नाश किया, सिद्ध भगवान ने आठ कर्मों का, तो कषाय किसके पास हुई? अरिहंत भगवान के पास बचे, चार कर्म बचे हैं तो
नहीं, किसी के पास नहीं।
बराबर, तो भगवान बनने के लिए हमको सारे कर्मों का नाश नहीं करना है। सिंपल डेफिनेशन क्या हुई, भगवान बनने के लिए हमको कषायों का नाश करना है, चार कषायों का। तो अरिहंत भगवान ने चार कषायों का नाश किया तो वो अरिहंत बन गए, और सिद्ध भगवान के भी चार कषाय नहीं है, तो हमारे दोनों देव जो हैं, अरिहंत देव और सिद्ध देव, इन दोनों के पास कॉमन क्या है कि दोनों के पास कषाय नहीं है। बराबर, तो चार प्रकार की कषाय होती है, ओके ओके। तो यदि हमको भगवान बनना है, मतलब मोस्ट सुप्रीम बनना है, तो हमको चार कषायों को नाश करना पड़ेगा। बराबर, अच्छा,
कषाय मीन्स,
मुझे कषाय मीन्स जो आत्मा को कसे, यानी कि दुख दे, यानी कि पैशन, यानी कि क्रोध मान माया लोभ एंगर, ये कषाय है। प्राइड, मान करना, घमंड करना, ये कषाय है। किसी के साथ चीटिंग करना, छल कपट करना, मायाचारी करना, इसको बोलते हैं माया, चीट, टू चीट, ओके, तो ये भी एक कषाय है। और एक है लास्ट की लोभ, ग्रीड होना कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो ये ग्रीड नंबर फोर्थ नंबर की कषाय है. तो चार नंबर की कषाय कौन कौन सी हुई, चार कषाय कौन कौन सी हुई बताइए आप. हेलो.
एंगर, प्राइड, चीटिंग एंड ग्रीड.
वेरी गुड. एंगर, प्राइड, चीटिंग एंड ग्रीड, दीज आर द फोर पैशन. ये चार पैशन, इनको कषाय बोलते हैं. ठीक है, अब ये पैशन का तो हमने डिवीजन किया उनके नेचर पर, अब उनकी इंटेंसिटी पर उसके चार अलग डिवीजन होते हैं. कि एक तो एकदम हाई एंगर होना, फिर मीडियम एंगर होना, फिर लो एंगर होना, फिर एंगर ही ना होना. तो हमने ऐसे इनके चार डिवीजन किए. ओके, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन. इसको हम बाद में पढ़ेंगे कभी, लेकिन जस्ट अभी शॉर्ट में ही जान लेते हैं कि इसकी इंटेंसिटी के हिसाब से. ओके, तो ये चार प्रकार की, ये अभी हम जो बात कर रहे हैं ये इंटेंसिटी की वजह से बात कर रहे हैं. तो अरिहंत भगवान ने सारी चारों की चारों, एंगर, प्राइड, ग्रीड एंड चीट, इन चारों को उन्होंने बिल्कुल खत्म कर दिया. तो उनके पास एकदम कोई किसी भी लेवल में नहीं है ये, सिद्ध भगवान के पास भी. अभी अब ये बात करते हैं, मुझे प्रश्न बड़े लोगों से पूछना था कि ये बताइए कि अभी अभी हम गृहस्थ अवस्था में मैक्सिमम कितनी कषायों का अभाव हो सकता है, हम कितनी कषायों को बिना मुनिराज बने अभाव कर सकते हैं.
अनंतानुबंधी का भाव कर सकते हैं,
अनंतानुबंधी का भाव कर सकते हैं, मतलब एक का भाव कर सकते हैं, बाकी कितनी बचेंगी, तीन. दो का भी कर सकते हैं क्या, दो का कर सकते हैं क्या,
हाँ, पांचवी गुणस्थान तक, या
पांचवे गुणस्थान में दो का भी हो जाता है. तो हम दो कषायों का, यदि हम अभी इस पोजीशन में रहे तो मैक्सिमम दो कषायों का भाव कर सकते हैं. मेरा दूसरा क्वेश्चन, देव गति में और नरक गति में मैक्सिमम कितनी कषायों का अभाव होता है,
एक
कषाय का अभाव होता है. ठीक है, तो मतलब ये हुआ, देखो एक कषाय का अभाव कब हो जाए, जब हमको सम्यक्त होता है ना, तो जैसे ही सम्यक दर्शन होता है, मिथ्या दर्शन जाता है, तो हमारी एक कषाय चली जाती है, तो तीन बचती है. तो जैसे ही हमें सम्यक दर्शन हुआ, माला रिजुल समीर दिया, जैसे ही हमने सम्यक दर्शन को लिया, तो हमारी कितनी कषाय बचती है, तीन बचती है चार में से. अनंतानुबंधी चली जाती है तुरंत, खत्म हो जाती है. ओके, तो देव गति में और नरक गति में हम सिर्फ सम्यक दर्शन ले सकते हैं, व्रत नहीं ले सकते. हम यदि व्रत ले लेंगे तो हमारी दो कषाय चली जाएंगी, देव गति में और तिरंज गति में, और सॉरी देव गति में और नरक गति में दो, एक कषाय का अभाव होगा. बराबर. अब ये बताओ कि सर्वार्थ सिद्धि में जो देव रहते हैं वो कितने भवों तक संसार में रहेंगे, एक भव तक. यानी सर्वार्थ सिद्धि में जो देव होते हैं, टॉप मोस्ट जो विमान है, सिद्धशिला के एकदम नीचे जो स्वर्ग है ना, सर्वार्थ सिद्धि, वहां पर जो जीव रहते हैं वो लोग अगले भव में मनुष्य बन के मोक्ष जाते हैं पक्का. जो जो जीव वहां पर है वो अगले भव में जन्म लेंगे और मोक्ष जाएंगे. ओके, सर्वार्थ सिद्धि में जो लास्ट नंबर का एकदम स्वर्ग है ऊपर, सबसे सिद्ध शिला के जस्ट नीचे. ओके, तो अब मुझे ये बताओ कि तीन लोग के सबसे उत्कृष्ट जीव कौन से हैं, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान को हटा दें तो, वो एक भव के बाद मोक्ष जाने वाले सर्वार्थ सिद्धि के देव, या फिर तीन कषाय के अभाव करने वाले हमारे मुनिराज.
तीन कषाय के अभाव करें.
अरे लेकिन मुनिराज का ये जरूरी नहीं है कि वो इस भाव में अगले भाव में मुक्त जाएंगे, लेकिन वो सर्वार्थ सिद्धि वाले तो डेफिनेटली अगले भाव में मुक्त जाएंगे.
मुनिराज इस भाव में भी जा सकते हैं ना अपना उपयोग.
अरे लेकिन उनका पक्का नहीं है ना, जैसे अभी कुंद आचार्य देव थे हमारे, तो हमको नहीं पता है कि अब वो कब मोक्ष जाएंगे. अगले भाव में जाने जरूरी नहीं है. बताइए.
मोक्ष जाना तो पर्याय है, पर जब तीन कषाय का अभाव हुआ तो अंदर उतनी स्थिरता है और उतना अंदर सुख है, तो शुद्धि की वृद्धि उतनी ज्यादा.
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. कि हमारे पास इसका ये नहीं देखना है कि वो मोक्ष जा रहा है, ठीक है, हमें ये देखना है कि वर्तमान में वो कितने शुद्ध हैं. तो वर्तमान में वो सर्वार्थ सिद्धि के देव तो सिर्फ एक ही कषाय का अभाव है, लेकिन जो हमारे मुनिराज हैं, जो साधु परमेश्वर थी, उनको कितने कषाय का अभाव है, तीन का. तो वो हमारे जो मुनिराज है वो अरिहंत देव के बाद अगले उत्कृष्ट सर्वोत्कृष्ट पुरुष है, बराबर बराबर?
हाँ जी।
हेलो। तो अब गौर करने वाली बात क्या है कि अहो हमारे गुरु से अन्य मतों के जो देव हैं वो भी पानी भरते हैं उनके सामने, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है।
कंपैरिजन ही नहीं।
जहाँ पर हमारे गुरुओं का लेवल है वहाँ अन्य मत के भगवानों का लेवल नहीं है, तो फिर हमको ये जिन दर्शन मिलने पर क्यों ना बहुमान आए कि हमारे गुरु भी इस जगत के सर्वोत्कृष्ट चार गतियों के जीवों को ले लो, तो ना तो सर्वार्थ सिद्धि के देव उनके सामने कुछ है, नारकी और तिरंजीव भी तो कुछ बात ही नहीं कर रहे, ना मनुष्य के कोई भी आपके कोई भी किसी को भी ले आओ, हमारे मुनिराज की अंतः परिणति के सामने बताओ तीन लोक में इतना शांत जीव है कौन, बराबर ना? उनके जितना शांत विशुद्ध जीव हम अरहंतों को तो अलग ही कर दिया, वो तो भगवान हो गए, अब अरहंतों के अलावा इतनी विशुद्धि वाले जीव है कौन? तो आपको जिनके गुरु ही तीन लोक के उत्कृष्ट जीव है, तो यार वो यदि गुरु हमसे करुणा करके कुछ कहते तो हम लोग कितने लकी हैं कि हमसे हम पर करुणा करके वो तीन लोक के उत्कृष्ट जीव। अब या मुझको कल बराक ओबामा आकर कुछ बोलेगा, मानस आपको कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो आपको कैसा फील होगा? प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वो कॉम्प्लीमेंट कर रहा है मानस को, तो मानस को कैसा फील हो रहा है?
गंदा।
हाँ?
I mean, अबे अच्छा
अच्छा ओके okay. गंदा मतलब होता है बैड और अच्छा मतलब होता है गुड। ओके तो क्या गुड और बैड?
गुड
गुड होगा ना। तो अरे अब जो तीन लोग के नॉट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो तीन लोग के सबसे उत्कृष्ट जीव हैं, ऐसे हमारे मुनिराज वो हम पर खाना करके हमको बोलते हैं हे मित्र हे भगवान हे जीव तुमने अनंत दुख भोगे हैं, अब तुम इन दुखों को छोड़कर अपने स्वभाव में जाओ, तो अब हमको एकदम लकी फील नहीं करना चाहिए कि बताओ ये डायरेक्टली मुझसे बोल रहे हैं, ये जो ग्रंथ उन्होंने अपने लिए नहीं मेरे लिए लिखा है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कि तीन जिनके अंत परिणति से निर्मल तीन चारों गतियों में ऐसा कोई जीव नहीं जो उनके सामने कोई कंपैरिजन करने लायक भी हो, ऐसे मेरे गुरु मुझसे सीधे आकर बोलते हैं कि सच्चा मार्ग ये है, तुम ऐसे समझोगे तुम्हें निश्चित ही मोक्ष होगा, तो क्यों ना मुझे उनकी बात पर भरोसा हो और मैं उनकी बातों पर विचार करके आगे अपना काम करूं। मैं क्यों अब किस बात पर किस बात का वेट कर रहा हूँ कि अब भगवान आकर मुझे उपदेश दें तब मैं अपना काम करूंगा, तो हमको अभी अपना काम करना चाहिए। तो हम सबको पहले ये विचार करना है कि भगवान ने मुझसे बोला है, हमारे देव ने ये बोला है, तो हमारे देव का निर्णय एकदम सही है क्योंकि हमने देवों का पहले निर्णय कर लिया है कि सच्चे देव है, हमारे गुरुओं का हमें पता है कि उनकी महानता कितनी है, अब जो इनके अब ये जो कुछ भी बोलने वाले हैं मेरे हित के लिए बोलेंगे, अब ये जो कुछ भी बोल रहे हैं मुझको उस पर भरोसा कर कर डर कर या कैसे भी कर कर मुझे अपना काम जरूर करना है, बराबर? इसको बोलते हैं बोध दुर्लभ भावना, कि जिनको तीन लोक के उत्कृष्ट मुनिराजों का उपदेश मिला हो, तीन लोक के उत्कृष्ट जीवों का उपदेश मिला हो, उनके भाग्य की महिमा कौन कौन से जीव से हम अपनी तुलना करें? त्रियंश गति के जीवों से, नरक गति के जीवों से, देव गति के उन जीवों से जिनको भी ये बात सुगम नहीं है, तो हमको अभी बहुत प्रिविलेज्ड फील करके अपना काम करना है, और ये वाली बात है बोधि दुर्लभ भावना। अब हमारा टाइम हो गया है तो हम अभी आगे गुरुदेवश्री ने क्या बोला था, आज गुरुदेवश्री ने दो तीन अच्छी अच्छी स्टोरीज भी सुनाए थे, तो हम वो भी बात नेक्स्ट सेशन में करेंगे। ओके तब तक आप लोग को चार क्षण तक सबको याद करने हैं और मैं अगले सेशन में किसी से भी पूछूंगा। ओके ठीक है okay. लेकिन ये 12 भावनाओं में से अच्छा मैं तीसरी भावना का और 12th नंबर की भावना का नाम और बताता हूँ। 12th नंबर की भावना कौन सी है कौन बताएगा? धर्म भावना है, धर्म भावना। ओके तो 10th इज लोक भावना जिसमें तीन लोक हैं, 11th इज बोधि दुर्लभ भावना और 12th इज लोक भावना, सॉरी धर्म भावना, धर्म रिलीजन, धर्म भावना। ओके तो हमने तीन भावनाएं आज पढ़ी और बोधि दुर्लभ भावना का हमको बार बार विचार करना चाहिए कि हम लोग कितने लकी हैं। हम लोग वो दूसरों की वेल्थ को देखकर या दूसरों के नॉलेज को देखकर बिल्कुल कभी नहीं हमको कुछ शेम फील होना चाहिए, हमको कभी बुरा नहीं लगना चाहिए, हमको कभी जेलस नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो है वो आउट ऑफ 6 बिलियन किसी के पास नहीं है। हम यदि कुछ लोगों को हटा दें तो प्लीज हमको फील प्रिविलेज्ड होकर इस चीज का, ये जिनागम का जितना ज्यादा हम यूज कर सकें उतना ज्यादा अपने हित के लिए यूज करना चाहिए। चलिए हम लोग जिनवाणी स्तुति करेंगे। किसी को कोई क्वेश्चन है अभी? हेलो हेलो
नहीं।
ओके, तो आज का मतलब समझाना बोधि दुर्लभ भावना सबको, आई नो थोड़ा ज्यादा लंबा हो गया, बट हमको ये जानना पड़ेगा कि हमारे मुनिराज कोई सामान्य प्राणी नहीं है, वो तीन लोक के मतलब चारों गतियों में वो एक भवावतारी सर्वासिद्ध के देव से भी उनके सामने वो पानी भरते हैं, देव भी उनके सामने कुछ भी नहीं है इन कंपैरिजन है। ऐसे मुनिराज जो सौदर्म इंद्र जो कि बहुत सारे तीर्थंकर भगवानों का पूरा देखता है, सारे कल्याणक कराता है, वो भी हमारे मुनिराजों के सामने कुछ भी नहीं है। तो ऐसे मुनिराजों की बात हमको मिली है तो हमको बहुत प्रिविलेज्ड फील करना चाहिए। ओके चलो जिनवाणी स्तुति करेंगे, आज रिजुल कराएंगे जिनवाणी स्तुति।
जावाने के ज्ञान ते सूजे लोका लोक सोबानी मस्त करूं सदा देव हो दोक।
खुले कर दो बंद।